का था, रूह वही, रूप नया।
शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर के पिछले भाग में आपने सुना कि बिल्ली के कातिल का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर सोहराब ने सर्जेंट सलीम से श्रेया से मिलने को कहा। क्या वाकई उस बिल्ली का कातिल विक्रम के खान है? कौन थी वो लड़की जो सोहराब का पीछा कर रही थी? ये सब जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर का ये भाग। श्रेया सार्जेंट सलीम की सोच से कहीं ज्यादा एडवांस निकली थी। सुबह नाश्ते के बाद इंस्पेक्टर सोहराब ने उसे श्रेया का नंबर दिया था। सार्जेंट सलीम ने वहीं बैठे बैठे उसका नंबर मिला दिया। अपना परिचय देने के बाद उसने श्रेया को शेक्सपियर कैफे में मिलने के लिए बुलाया था। वो तुरंत ही राजी हो गई। सार्जेंट सलीम ने उसके सामने दो शर्तें रखी थी। पहली कि वो इस मुलाकात के बारे में किसी को नहीं बताएगी और दूसरी शर्त यह थी कि वो अकेले आएगी। शेक्सपियर कैफे में सलीम ठीक 11 बजे पहुंच गया था। ये कैफे अपने नाम के मुताबिक था। बड़े से हॉल को यूरोपियन स्टाइल में सजाया गया था। हॉल के सेंटर में नाटककार शेक्सपियर की संगमरमर की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी। एक हिस्से में बुकशेल्फ भी था। यहां सिर्फ शेक्सपियर के नाटकों की किताबें और शेक्सपियर पर लिखी गई किताबें रखी हुई थी। कैफे में एलीट क्लास के लोगों के साथ ही शेक्सपियर पर रिसर्च करने वाले अंग्रेजी के छात्र बड़ी संख्या में आते थे। यहाँ हर महीने शेक्सपियर का कोई ना कोई नाटक भी खेला जाता था। इसके लिए कॉफी हाउस की उसकी अपनी रेपर्टरी थी। एक नाटक खत्म होने के दो दिन बाद ही अगले नाटक की रिहर्सल शुरू हो जाती थी। नाटक के लिए अलग अलग टिकट लगते थे। एक हॉल में एक साथ 100 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। यहाँ 70 तरह की कॉफी मिलती थी। हॉल हमेशा भरा रहता था। शौकीन लोग यहाँ घंटों बिताया करते थे। इस कैफे की खास बात और थी, अगर अकेले आया कोई शख्स किसी का साथ चाहता है तो यहाँ साथ में कॉफी पीने के लिए लड़कियां भी थीं। वो न सिर्फ साथ में कॉफी पीती थीं, बल्कि शेक्सपियर के बारे में काफी किस्से भी सुनाती थीं। इन लड़कियों का 20 मिनट तक साथ पाने की कीमत एक कॉफी और खुशी से दी जाने वाली टिप थी। सार्जेंट सलीम को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसके फोन की घंटी बजी और अगले ही पल एक लड़की हॉल में दाखिल होते दिखी। सलीम ने फोन पर उसे बता दिया था कि वो किधर बैठा है। लड़की खूबसूरत थी, यकीनन वो फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए ही आई होगी। वक्त और हालात ने इसे श्रेयाली का असिस्टेंट बना दिया होगा, सार्जेंट सलीम ने सोचा। श्रेया ने आंखों पर काले रंग का चश्मा लगा रखा था। हल्के काही रंग के पैंट पर ब्लैक कलर का टॉप पहने हुए थी। उसने बाल खोल रखे थे। उसने सलीम से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। क्या पियेंगी? आयरिश कॉफी। सलीम ने वेटर को एक आयरिश कॉफी और खुद के लिए व्हाइट कॉफी लाने को कहा। आयरिश कॉफी में विस्की मिलाई जाती है, काफी टेस्टी होती है। व्हाइट कॉफी मलेशिया से आती है। पाम ऑयल में कॉफी बीन्स को भून कर इसे बनाया जाता है। आपकी शर्त के मुताबिक मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ना ही यहाँ किसी को लेकर आई हूँ। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। श्रेया ने बात अधूरी छोड़ दी। मैं खूबसूरत लड़कियों की हर शर्त मान लेता हूँ, सलीम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। दिल पे एक आदमी हो, श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा। दिल ही नहीं है तो फेंकूंगा किस पर? मतलब जब मैं किसी लड़की से मिलने जाता हूँ तो बॉस मेरा दिल अपने पास रख लेते हैं, साजन सलीम ने यह बात पूरी गंभीरता से कही। सलीम की इस बात पर श्रेया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, ऐसा लगता है जैसे जल तरंग बज रहे हो। तुम यकीनन फ्लर्ट हो। एक बात बताओ, ये विक्रम खान क्या बला है? सलीम ने बात बदलते हुए कहा। पहले मेरी शर्त, श्रेया ने उसे याद दिलाया। कहा तो हर शर्त मंजूर है। शर्त यह है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगी तुम उसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। वादा रहा, सलीम ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। मैंने पूछा था कि विक्रम खान से श्रेयाली के रिश्ते कैसे थे। बहुत कमीना आदमी है, जालिम भी है, उसने ही शेयाली मैम की जान ली है, श्रेया ने गुस्से में कहा। हाँ, मैं समझा नहीं, साफ साफ बताओ ना, साजन सलीम ने सीधा होकर बैठते हुए कहा। वो इतना कहने के साथ ही श्रेया अचानक सर पकड़कर बैठ गई। उसकी ये कैफियत देखकर सलीम कुछ समझ नहीं सका। तभी उसकी नजरें गेट की तरफ गईं। काउंटर के पास शैलेश जी अलंकार खड़ा हुआ था। ये शेयाली की आने वाली फिल्म का राइटर और डायरेक्टर था। सलीम को बात समझते देर नहीं लगी, उसने अपना फेल्ट हैट आगे की तरफ झुका लिया। श्रेया से उसने स्कार्फ से मुंह ढकने के लिए कहा। सार्जेंट सलीम श्रेया से आमने सामने बैठकर बात करना चाहता था ताकि उसके भावों को पकड़ सके। इसके बाद श्रेया को राजी करके लॉन्ग ड्राइव पर जाने का इरादा था। शैलेश के अचानक टपक पड़ने से मामला बिगड़ गया था। श्रेया ने मुंह पर स्कार्फ बांध लिया। इसके साथ ही सलीम उठ खड़ा हुआ। श्रेया ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका रखा था, सलीम का हाथ उसके कंधे पर था। इसी तरह की इंटिमेसी के चलते दोनों कैफे से बाहर निकल आए। सलीम के जाने के बाद कुमार सोहराब ने गोस्ट स्टार्ट की और कोठी के कंपाउंड से बाहर आ गया। इस वक्त सुबह के 9 बजे थे। कोठी से कुछ आगे एक कार में एक लड़की बैठी हुई थी। सोहराब की गोस्ट जैसे ही आगे निकली, लड़की ने भी अपनी कार स्टार्ट कर दी। उसकी कार एक खास दूरी बनाकर गोस्ट का पीछा कर रही थी। सलीम के जाने के कुछ देर बाद ही सोहराब को बिल्ली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली को आधी रात के बाद किसी वक्त रस्सी जैसी किसी चीज से गला घोंट कर मारा गया था। सोहराब ने बैक मिरर में देख लिया था कि एक कार उसका पीछा कर रही है। ये वही कार थी जिसने सुबह तड़के भी सोहराब का पीछा किया था। सोहराब ने जल्द ही कार से पीछा छुड़ा लिया और अब वो विजडम रोड की तरफ जा रहा था। शेयाली के बंगलों से कुछ दूर पहले ही उसने कार रोक ली। इसके बाद पैदल ही गेट तक आया। गेटमैन को अपना कार्ड दिखाया, उसने तुरंत ही गेट खोल दिया। गेटमैन ने सोहराब को पहचान लिया था, एक दिन पहले भी सोहराब यहां आ चुका था। अंदर पॉन्ड के पास कुर्सी डाले विक्रम बैठा हुआ था, वो एक किताब पढ़ रहा था। पॉन्ड में एक बिल्ली नहा रही थी, ये भी मैनकून नस्ल की ही बिल्ली थी। सोहराब को देखते ही विक्रम उठ खड़ा हो गया। उसने सोहराब से हाथ मिलाया और सामने रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। जी सर, बताइए, शेयाली के बारे में कुछ पता चला?
अभी तक तो नहीं,
सोहराब ने कहा और उसके हाथों से किताब लेकर देखने लगा। ये स्पेन के चर्चित चित्रकार पाब्लो पिकासो की प्रेमिका रही सिल्वेट डेविड पर लिखी गई एक किताब थी। सोहराब ध्यान से उसे देखने लगा। अंदर के पन्नों पर सिल्वेट की एक तस्वीर देखकर वो ठहर गया। सोहराब उस तस्वीर को देर तक देखता रहा। कुछ देर तक वो किताब के पन्ने पलटता रहा, उसके बाद उसने किताब विक्रम को वापस कर दी। सोहराब ने बहुत ध्यान से विक्रम के चेहरे को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अब आप क्या लेंगे, विक्रम ने खुद को संभालते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज कहीं बहुत दूर से आ रही हो।
शुक्रिया विक्रम, आपकी पेंटिंगों की नुमाइश कब है? अब
अभी कुछ नया है नहीं दर्शकों के सामने रखने के लिए, उसने निराशा से कहा।
आपके प्रशंसकों को आपकी प्रदर्शनी का इंतजार है, आपको फिर से शुरू करना चाहिए।
मन नहीं हो रहा कुछ भी रचने का।
दरअसल हमारी लंबी जिंदगी में कोई भी पीरियड उम्र भर का नहीं होता, सैकड़ों हजारों छोटे छोटे पीरियड होते हैं एक जिंदगी में। हम एक पीरियड को ठीक से जी भी नहीं पाते और अगला शुरू हो जाता है, यही जिंदगी है।
आदमी ठीक से देख पाता नहीं और आंखों का मंजर बदल जाता है, विक्रम ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा।
ख्याल रखिएगा अपना,
सोहराब ने कुर्सी से उठते हुए कहा। इंस्पेक्टर, मेरी एक बिल्ली खो गई है।
कैसे?
एक कुत्ते के डर से भाग गई। वो बिल्ली दरअसल शियाली की सबसे प्रिय बिल्ली थी, इसलिए मुझे जान से प्यारी थी। मैं बहुत परेशान हूं।
मिल जाएगी, धीरज रखिए,
सोहराब ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। सार्जेंट सलीम श्रेया को लेकर बाहर निकल आया। उसने श्रेया को मिनी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। कार स्टार्ट होकर तेजी से आगे बढ़ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? श्रेया ने पूछा।
लॉन्ग ड्राइव पर।
मेरा शूटिंग शेड्यूल है।
किस वक्त?
शाम 4 बजे।
हम लौट आएंगे तब तक, बल्कि मैं तुमको सीधे शूटिंग साइट पर ही छोड़ दूंगा।
ओके।
कार तेजी से भागी जा रही थी। सलीम कार को शहर से दूर ले आया था। कुछ दूर जाने के बाद दोनों तरफ सागौन के पेड़ों की श्रृंखला शुरू हो गई थी। यहां से 70 मील दूर जाने पर होरारा का जंगल शुरू हो जाता था। 250 मील के क्षेत्र में यह जंगल फैला हुआ था। काफी घना जंगल था। बड़ी संख्या में जंगली जानवर पाए जाते थे। जंगल से 5 मील पहले ही हीरा नदी पड़ती थी। ये नदी जंगल से होकर गुजरती थी। सार्जन सलीम उस नदी तक जाने के लिए ही निकला था।
हाँ, तुम कह रही थी कि विक्रम ने ही श्रेयाली की जान ली है?
साजन सलीम ने शहर से बाहर निकलने जाने के बाद उससे ये पूछा।
हाँ,
वो बहुत जालिम है, श्रेया ने तल्ख लहजे में कहा।
विक्रम को श्रेयाली मैम बहुत मानती थी, बल्कि यूं कहूं कि जान छिड़कती थी। वो उसे बहुत बड़ा आर्टिस्ट मानती थी।
श्रेया रुककर कुछ सोचने लगी। जान लेने वाली बात बताओ, सलीम ने टोका।
विक्रम को जुए की लत थी। वो श्याली मैम के पैसे पर ऐश कर रहा था। श्याली मैम जब पैसे देने से मना करती तो वो उन पर हाथ भी छोड़ देता था। वो कई बार धमकी दे चुकी थी कि अगर उन्हें अब मारा तो वो जान दे देंगी। इस घटना के 2 दिन पहले भी विक्रम ने पैसों के लिए उन्हें मारा था। उस वक्त मैं वहीं पर मौजूद थी। विक्रम ने मुझे भी गुस्से से भगा दिया था।
यानी तुम कहना चाहती हो कि श्याली ने विक्रम की वजह से खुदकुशी कर ली है?
जी, वजह से नहीं, बल्कि उन्हें फोर्स किया गया खुदकुशी के लिए, श्रेया ने कहा।
अचानक सार्जेंट सलीम ने ब्रेक लगाकर कार रोक दी। सड़क पर एक पेड़ गिरा पड़ा हुआ था। सलीम कार से नीचे उतर आया। वो पेड़ के पास जाकर खड़ा हुआ ही था कि उसके सर पर पीछे से किसी भारी चीज की चोट हुई और वो भी कटे हुए पेड़ की तरह नीचे आ गिरा। बेहोश होने से पहले उसने श्रेया के चीखने की आवाज सुनी थी। शाम के 5 बजे थे। धूप की तपिश थोड़ा कम हो गई थी। 7 डार्क स्ट्रीट स्थित कोठी गुलमोहर विला के बड़े से दरनुमा गेट से डायमंड ब्लैक कलर की गोस्ट बाहर निकल रही थी। उसे इंस्पेक्टर कुमार सोहराब ड्राइव कर रहा था। आज तीसरे दिन भी एक कार उसके इंतजार में खड़ी थी। सोहराब की कार आगे बढ़ते ही पीछे वाली कार भी स्टार्ट हो गई। कुछ देर बाद उसने एक मुनासिब दूरी बनाकर गोस्ट का पीछा करना शुरू किया। गोस्ट का पीछा करने वाली आज एक नई कार थी। सोहराब को कुछ देर बाद ही अंदाजा हो गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है। सोहराब ने कार को सिसली रोड की तरफ मोड़ दिया। पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। इस रोड पर कम ही लोग आते थे। इसकी वजह यह थी कि तकरीबन 50 किलोमीटर आगे जंगलात शुरू हो जाते थे। शिकार के शौकीन या फिर घूमने फिरने के लिए ही लोग उधर आते थे। गर्मी का मौसम होने की वजह से अभी लोग घरों में ही दुबके हुए थे। गोस्ट की स्पीड 50-55 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। गोस्ट का पीछा अभी भी जारी था। कुछ दूर जाने के बाद पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। सोहराब ने कार की स्पीड बढ़ा दी। पीछे वाली कार की स्पीड भी बढ़ गई थी। दोनों ही कारें शहर से काफी दूर निकल आई थीं। अचानक सोहराब की कार के ब्रेक चीखे और कार रुक गई। इसके साथ ही सोहराब ने बड़ी तेजी से कार को टर्न किया और वापस शहर की तरफ जाने लगा। पीछे वाली कार अभी भी आगे बढ़ी आ रही थी। सोहराब ने अपनी लंबी सी कार आने वाली कार के सामने आड़ी तिरछी करके रोक दी। दूसरी कार के तेजी से ब्रेक लगे और वो रुक गई। कार से एक लड़की उतरकर बाहर आ गई। वो टॉमबॉय नजर आ रही थी। उसने ग्रे पैंट के ऊपर काही रंग का टॉप पहन रखा था। सर पर हंटिंग हैट लगा रखा था।
इस तरह पीछा करने का मतलब?
सोहराब ने नाराजगी भरे अंदाज में पूछा।
ऐसे मत डांटिए, मैं डर जाऊंगी, लड़की ने बिसूरते हुए कहा।
उसकी इस बात पर सोहराब को बेसाख्ता हंसी आ गई।
आप मेरा 3 दिन से पीछा क्यों कर रही हैं?
सोहराब ने नर्म लहजे में पूछा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी।
मुझे आपसे मिलना था, लड़की ने कहा।
यह मिलने का कौन सा तरीका है भला?
आपसे डर लगता है, वो आपकी आंखें ना खतरनाक हैं।
कोई काम है आपको हमसे? जी, मेरा नाम हाशना है। क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं?
हम शहर चलकर बात करते हैं, मेरे पीछे आओ।
इसके बाद आगे सोहराब की कार चल रही थी और उसके पीछे हाशना की। तकरीबन आधे घंटे बाद दोनों शेक्सपियर कैफे पहुंच गए।
क्या लेंगी आप?
जो आप चाहें मंगा लीजिए।
मैं तो एस्प्रेसो लूंगा, शायद आपको पसंद ना आए।
जी, वो बहुत हार्ड होती है, मेरे लिए एस्प्रेसो मैकियाटो अच्छी रहेगी।
सोहराब ने वेटर को कॉफी के साथ कुकीज लाने को कहा।
आपने बिल्ली को मारकर गलत किया,
सोहराब ने नरम लहजे में कहा। सोहराब की इस बात पर हाशना की आंखें फैल गईं।
आपको किसने बताया?
हाशना ने हकलाते हुए कहा।
आपने विक्रम को परेशान करने के लिए बिल्ली को मारने के बाद जानबूझकर उसका रुमाल वहां प्लांट किया था।
ये झूठ है,
उसने ये बात तेज लहजे में कही। हाशना ने अब तक खुद को संभाल लिया था।
रुमाल पर येलो कलर का एक बाल मिला है, आपने भी अपने बाल येलो कलर के रंग रखे हैं।
ये तो कोई सबूत नहीं हुआ, जाने कितने लोगों के बाल येलो होंगे, हाशना ने दलील दी।
होटल में जब आपकी विक्रम खान से तकरार हुई थी तो आप दोबारा लौट कर आई थी, उसी वक्त आपने उसका रुमाल चुरा लिया था।
सोहराब का लहजा अब भी नरम था।
आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं, हाशना ने ढिठाई से कहा।
मिस हाशना, सीसीटीवी फुटेज में सारा मंजर मौजूद है।
सोहराब के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ा सख्त हो गई थी।
आपने नाहक एक जानवर की जान ले ली, वेरी बैड।
मैं विक्रम को सबक सिखाना चाहती थी, हाशना ढीली पड़ गई।
साफ साफ बताइए पूरी बात।
दरअसल मुझे विक्रम के खान की पेंटिंग्स बहुत पसंद है, उसकी पेंटिंग की हर लाइन जिंदगी से भरी हुई है। मैंने शहर में लगने वाली उसकी हर पेंटिंग प्रदर्शनी देखी है, उसकी कई पेंटिंग्स खरीदी भी हैं मैंने। तभी वेटर कॉफी लेकर आ गया, इस वजह से हाशना खामोश हो गई। वेटर के जाने के बाद हाशना ने फिर बताना शुरू किया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई, ये सिर्फ दोस्ती ही थी। मुझे मालूम था कि वो शियाली के साथ लिव इन में है। वैसे भी मुझे विक्रम की कुछ आदतें सख्त नापसंद हैं। मेरे बाबा यानी दादा ने पेरिस के एक मॉडल से शादी की थी, वो मॉडल कुछ दिन बाद उनसे अलग हो गई और पापा पेरिस से लौट आए।
हाशना ने कॉफी बनाते हुए कहा। वो कुछ देर के लिए खामोश होकर सोचने लगी। सोहराब ने भी उसे नहीं टोका।
बाबा उस मॉडल की एक न्यूड पेंटिंग अपने साथ लाए थे, उसे इंग्लैंड के एक चर्चित पेंटर ने बनाया था। ये बात बताते हुए हाशना की नजरें झुकी हुई थी।
ये कब की बात है?
ये 55 साल पहले की बात है, तब बाबा 24-25 साल के थे। बाबा उस पेंटिंग को सबकी नजरों से छुपाकर एक बक्से में बंद करके रखते थे। इत्तेफाक से एक बार मेरी नजर उस पर पड़ गई, बहुत शानदार पेंटिंग थी। बक्से में एक डायरी भी थी, मैं उसे चुपचाप निकाल लाई, उसी में बाबा ने सारा किस्सा लिखा था।
अब वो पेंटिंग कहाँ है?
वो पेंटिंग ही तो सारी परेशानी की जड़ बन गई है। एक बार मैंने विक्रम से उस पेंटिंग का जिक्र किया, उसने देखने की ख्वाहिश जाहिर की। बाबा एक बार शहर गए हुए थे, मैं मुनासिब मौका देखकर वो पेंटिंग उठा लाई और विक्रम को दे दी। कुछ दिन बाद ही बाबा को पेंटिंग गायब होने के बारे में पता चल गया। तब से घर में कोहराम बरपा है, बाबा किसी से खुलकर कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं।
विक्रम से पेंटिंग वापस लेकर चुपचाप पहुंचा दीजिए, किस्सा खत्म हो जाएगा।
विक्रम किसी भी कीमत पर पेंटिंग वापस करने को राजी नहीं है, कह रहा है अभी उसकी स्टडी पूरी नहीं हुई है।
इसमें भला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं?
आपको मैंने एक दिन विक्रम के घर से निकलते देखा था, गार्ड ने बताया कि आप जासूस हैं, आपकी काफी तारीफ भी सुनी है, इसलिए मैं तब से आपसे मिलने के लिए पीछा कर रही थी। ये बात किसी से कह भी नहीं सकती हूं, बाबा भी किसी जासूस से मिलने की बात कर रहे थे।
ओके, मैं देखता हूं आपकी किस तरह मदद की जा सकती है,
सोहराब ने सिगार का कोना तोड़ते हुए कहा।
लेकिन देखिए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, इससे हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी,
हाशना ने सोहराब की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन सोहराब की आंखों की ताब न लाकर नजरें झुका ली।
आप बेफिक्र रहिए,
इंस्पेक्टर सोहराब ने उसे दिलासा देते हुए कहा,
लेकिन अब विक्रम को डराने के लिए ही सही, किसी बिल्ली का कत्ल मत करना।
मुझे खुद बहुत अफसोस है उस बेजुबान जानवर के लिए। वो श्याली की सबसे प्यारी बिल्ली थी, उसे मैंने मारा है, ये बात विक्रम को मत बताइएगा,
हाशन ने गुजारिश की। सार्जेंट सलीम की आंख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। उसका सर अभी भी दुख रहा था, काफी जोर की लगी थी, वो उठकर बैठ गया। ये घास फूस वाला बिस्तर था, जमीन पर घास फूस डालकर उस पर जानवर की खाल बिछा दी गई थी। ये बिस्तर एक झोपड़ी के बीचों बीच था। झोपड़ी काफी बुरी बनाई गई थी, धूप छन कर अंदर आ रही थी। शायद इसी धूप की तपिश की वजह से सार्जेंट सलीम की आंख खुल गई। सार्जेंट सलीम बिस्तर पर बैठा हवनकों की तरह चारों तरफ देख रहा था। क्या वो मर गया है और सीधे जहन्नम भेज दिया गया है? फिर तो अभी गर्म तेल के कढ़ाई में उबाला भी जाएगा, उसके दिमाग में ख्याल आया। सर अभी भी दुख रहा था, उसे चक्कर आने लगा। वो आंख बंद करके फिर से लेट गया। काफी देर यूं ही लेटा रहा, इसके बाद वो फिर से उठकर बैठ गया। कुछ देर चारों तरफ ध्यान से देखता रहा, इसके बाद वो उठकर खड़ा हो गया और झोपड़ी से बाहर आ गया। बाहर का नजारा देखकर उसे यकीन हो गया था कि वो मरकर नरक में आ गया है। बाहर ढेर सारे लोग नंग धड़ंग इधर उधर आ जा रहे थे, कोई जानवर आग पर भूना जा रहा था। अजीब बात ये थी कि सभी पुरुष ऊपर से नंगे थे, सिर्फ नीचे का हिस्सा जानवर की खाल से ढका हुआ था। अलबत्ता महिलाओं के तन सलीके से ढके हुए थे। ये देखकर सलीम को थोड़ा सुकून मिला, जहन्नम के नियम भी शालीन है, उसने सोचा। सार्जेंट सलीम को एहसास हुआ कि उसने भी नीचे का हिस्सा किसी खाल से ढक रखा है, बाकी शरीर खुला है। उसे बड़ी शर्म आई, वो भाग कर झोपड़ी में आ गया। उसके पीछे पीछे दो जवान महिलाएं भी अंदर आ गईं। वो उसे पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले आईं। सलीम ने बाहर न निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। महिला होने के नाते वो उन पर हाथ भी नहीं उठा सकता था। उसके बाहर आते ही सभी महिलाएं और पुरुष उसके चारों तरफ नाचने लगे। कुछ महिलाएं उसका हाथ पकड़कर उसे भी नचाने की कोशिश करने लगीं। वो सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। कुछ देर तक इसी तरह का नाच गाना होता रहा। उसके बाद वही दोनों महिलाएं उसे जबरदस्ती एक झील के किनारे ले गईं। वहां एक पत्थर पर उसे बिठा दिया गया। पहले उन्होंने कई सारी पत्तियां उसे चबाने के लिए दी। पत्तियों से खुशबू आ रही थी, लेकिन उनका स्वाद कसैला था। सार्जेंट सलीम ने उन्हें कुछ देर चबाकर थूक दिया। इसके बाद दोनों महिलाओं ने उसके सारे शरीर पर कोई लेप लगा दिया। ये काफी खुशबूदार लेप था। लेप छुड़ाने के बाद उसे झील के पानी से नहलाया गया। काफी देर तक उस पर लकड़ी के एक खोल से पानी डाला जाता रहा। नहा चुकने के बाद उसे शेर की खाल दी गई। खाल देने के बाद महिलाएं उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गईं। सार्जेंट सलीम का मन हुआ कि मौका गनीमत है, वो यहां से भाग निकले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो किस दुनिया में है। उसने एक झाड़ी के पीछे जाकर नीचे पहनी खाल बदल ली। नहाने के बाद उसका मन थोड़ा साफ हुआ था। उसे अपने साथ घटी हर बात याद आने लगी। शेक्सपियर कैफे से लेकर वहां से लॉन्ग ड्राइव पर आने तक और फिर हमले तक की सारी बात याद हो आई। अचानक उसे श्रेया का भी ख्याल आया, उसे वो अब तक कहीं नजर नहीं आई थी। क्या उसने ही उसे जहन्नम तक पहुंचाया है? सार्जेंट सलीम को गायब हुए 24 से ज्यादा घंटे हो गए थे। पहले दिन जब वो शाम तक नहीं लौटा तो सोहराब ने कई बार उसे फोन मिलाया था, हर बार एक ही जवाब मिलता रहा, नॉट रीचेबल। सोहराब ने सोचा कि वो तफरीह करने कहीं दूर निकल गया है, उसे ज्यादा फिक्र नहीं हुई। सलीम जब रात को भी नहीं लौटा और ना ही उसका कोई मैसेज आया तो इंस्पेक्टर सोहराब को फिक्र होने लगी। उसने श्रेया का मोबाइल नंबर भी मिलाया, उसका नंबर भी बंद था। सोहराब को मालूम था कि सलीम उससे ही मिलने गया था। दूसरे दिन सुबह फोन मिलाने पर स्विच ऑफ बताने लगा। दोपहर को एक खबर पुलिस को मिली, मिनी कूपर हीरा नदी के किनारे एकांत में खड़ी थी। सलीम का मोबाइल सर्वेलेंस पर लगा दिया गया था। मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी नदी के पास ही मिली थी। इंस्पेक्टर कुमार सोहराब की गोस्ट तेजी से हीरा नदी की तरफ वाले रास्ते पर जा रही थी। इंस्पेक्टर मनीष भी उनके साथ था। कार सोहराब ड्राइव कर रहा था। मनीष पहली बार गोस्ट पर बैठा था। कार तेजी से भाग रही थी। कार का सस्पेंशन गजब का था। मनीष को ऐसा लग रहा था कि कार सड़क पर तैर रही है। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद वो दोनों नदी के करीब पहुंच गए। सोहराब ने सड़क के किनारे कार रोक दी। वो सागौन के पेड़ों के बीच से पैदल जाने के लिए बने रास्ते पर चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद नदी की तरफ गहरी ढलान शुरू हो गई। काफी गहरी और सीधी ढलान थी। इस पर चलना मुमकिन नहीं था। इंस्पेक्टर सोहराब जैसा मजबूत जिस्म का आदमी तेजी से नीचे की तरफ दौड़ रहा था। मनीष कुछ दूर तो दौड़ा, लेकिन उसके बाद उसके पैर उखड़ गए। मनीष गिर पड़ा और तेजी से लुढ़कता हुआ नीचे जाने लगा। आगे चल रहे सोहराब ने उसे संभाल लिया और उसे पकड़े हुए नीचे उतरता चला गया। कार के पास दो सिपाही ड्यूटी दे रहे थे। उन्होंने सैल्यूट मारा। इंस्पेक्टर सोहराब ने हाथों पर रबर के दस्ताने चढ़ा लिए। उसने पहुंचते ही कार का मुआयना शुरू कर दिया। कार की छत बंद थी, चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। कार में जोर आजमाइश के भी कोई निशान नजर नहीं आ रहे थे। सोहराब कार से बाहर आ गया। उसने मनीष से कहा,
दोनों इसी कार से यहां तक पहुंचे थे, लेकिन सवाल यह है कि वो आए किधर से थे।
मतलब? मनीष ने पूछा।
कार के अंदर से लेडीज परफ्यूम की महक आ रही है। जाहिर सी बात है, सलीम तो उसे यूज करेगा नहीं। सबसे अहम बात यह है कि कोई और रास्ता भी यहां तक आने का नहीं है, वरना उस ढलान से कार तो यहां तक आने से रही।
सोहराब ने रेत पर से कुछ उठा लिया। वो हेयर क्लिप थी। उसने हेयर क्लिप को पहचान लिया था। जब श्रेया श्याली के डूबने वाले दिन आई थी, तब भी उसने यही क्लिप बालों में लगा रखी थी। शायद ये उसकी फेवरेट थी। सोहराब ने क्लिप को जेब के हवाले कर दिया। इसके बाद सोहराब नदी की तरफ बढ़ गया। वो जमीन पर बैठकर रेत पर बने पैरों के निशान देखने लगा। नदी के किनारे गीली रेत पर कई सारे पैरों के निशान बने हुए थे। उन निशानों का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद वो खड़ा हो गया। मनीष भी पास ही खड़ा उन निशानों को गौर से देख रहा था। अगर समंदर होता तो ये निशान मिट गए होते, क्योंकि समंदर में साहिल की तरफ लहरें आती हैं। नदी सीधी बहती है, इसलिए निशान अब तक बचे हुए थे।
इन पैरों के निशानों में एक भी सार्जेंट सलीम का नहीं है। उसके जूतों के सोल की डिजाइन अलग है,
सोहराब ने मनीष से कहा।
ऐसा लगता है कि यहां से सलीम और श्रेया को बेहोश करके नाव या स्टीमर के जरिए कहीं ले जाया गया है।
बेहोशी का अंदाजा आपको कैसे हुआ? मनीष ने ताज्जुब से पूछा।
नदी के किनारे कुल 5 जोड़ी पैरों के निशान नजर आ रहे हैं। 4 जोड़ी पैरों के निशान काफी गहरे हैं। उसका मतलब साफ है कि उन्होंने कोई भारी चीज उठा रखी थी। दूसरी अहम बात, सार्जेंट सलीम 5 लोगों पर अकेले ही भारी था,
सोहराब ने कहा। यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने सलीम साहब को हथियारों के दम पर बेबस कर रखा हो,
मनीष ने पूछा। अगर ऐसा होता तो सलीम के जूतों के सोल भी नजर आते, क्योंकि तब वो अपने पैरों पर खड़ा होता। ये सोचना भी हास्यास्पद है कि उन लोगों ने सलीम और श्रेया को हाथों पर टांगने के बाद हथियारों से बेबस कर रखा था,
सोहराब ने उसे समझाया। सोहराब की इस बात पर मनीष खामोश होकर दूसरी तरफ देखने लगा।
अहम बात यह भी है कि वो उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अगर जान लेनी होती तो इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी। मिनी को रोड तक ले जाना, आओ पहले रास्ता तलाशते हैं।
तकरीबन 1 किलोमीटर तक घूमने के बाद उन्हें सड़क तक कार को ले जाने का एक रास्ता मिल गया। ये चौड़ा रास्ता था, यहां ढलान भी कम थी। कुछ देर बाद गोस्ट और मिनी कूपर शहर की तरफ रवाना हो गई। मिनी को मनीष ड्राइव कर रहा था। दोनों सिपाही मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे। कौन थे वो लोग जिन्होंने श्रेया और सार्जेंट सलीम को अगवा कर लिया? क्या इसमें विक्रम का हाथ है, श्रेया का हाथ है, या उन लोगों का जिन्होंने श्रेयाली को अपनी जान लेने पर मजबूर किया था? ये सब जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ 134 किलोमीटर का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।